हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम क्लास ऑन भीष्ट अष्टमी इन द्वारका टेम्पल ऑन 15 फरवरी 2016 गिवन बाय माय सेल्फ प्रशांत मुकुंद दास.
यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वन चार यमुना तेरा राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे माधव राधा माधव राधे जय रुक्मणी द्वारकाधीश रुक्मणी द्वारकाधीश रुक्मणी द्वारकाधीश जय रुक्मणी द्वारकाधीश जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नीताय गौरा हरिबोल 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 नीताय गौरा हरिबोल नीताय गौर हरिबोल 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 हरिबोल
श्री श्री रुक्मणी द्वार नरकाधीश भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री पंच तत्व गौर निताय की, पतित पावन श्रीला प्रभुपाद की, भीष्म अष्टमी महोत्सव की, ग्रंथरा श्रीमद भागवतम की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीर्ये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज जो अवसर है भीष्म अष्टमी, तो इस अवसर पर कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। तो कुछ श्लोक आज हमने नहीं लिया है, भीष्म पितामह जी के जीवन चरित्र के बारे में और उनसे क्या शिक्षाएं मिलती हैं उस पर बोलने का प्रयास करेंगे, जैसा कि आदेश किया गया है बोलने के लिए। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति शब्दकांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्री राधा कृष्णा पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो भीष्म अष्टमी आज माघ जो महीना चल रहा है पौष का महीना, उसके बाद माघ जो है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से माघ का महीना। इसमें दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष जो है इसकी अष्टमी को भीष्म अष्टमी कहते हैं। भौतिकवादी लोग अगर आप बाहर जाएंगे तो आज के दिन भीष्म पितामह जो कि महाभारत के सबसे बड़े महारथी योद्धा थे उनके बारे में बोलते हैं कि आज उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। लेकिन गौड़ीय वैष्णव मानते हैं कि भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया था मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि तब जो सूर्य था वो उत्तरायण में आया था और उस समय उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। लेकिन माघ शुक्ल जो अष्टमी है इसको आविर्भाव भीष्म पितामह जी के जन्म के बारे में बोला जाता है, इसलिए आज हम उनका तिरोभाव नहीं मनाते हैं। जैसे भौतिकवादी लोग अगर आप जाएंगे पूछेंगे सनातन धर्म मंदिरों में तर्पण और श्राद्ध करते हैं उनके जन्मदिन के ऊपर। वैसे तो बात ऐसी है कि वैष्णव और भगवान जो होते हैं उनके जन्म और कर्म सब दिव्य होते हैं, तो उनका आना जाना सब भगवान की लीलाओं का एक हिस्सा होता है। लेकिन फिर भी गौड़ीय वैष्णव आज जो है उनके जन्म के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम जन्म और उनके शरीर को त्यागना दोनों लीलाओं से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अगर हम उनकी उम्र को देखें उस कैलेंडर के हिसाब से कि द्वापर युग के बाद कलयुग को शुरू हुए तकरीबन 5000 साल बीत गए हैं, तो अगर भीष्म पितामह जी का टाइम पीरियड देखा जाए तकरीबन 5154 साल पहले उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और उनका जो जन्म था वो बहुत ही एक अलग तरीके से हुआ। किस कारण से वो आए तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमें पहले ये जानना चाहिए कि भीष्म पितामह हैं कौन। तो भीष्म पितामह महाजन, महाजन बोले जाते हैं ना, महाजनो येन गतः स पंथा। हमारे शास्त्र में वर्णन है महाजनों ने जैसा बताया वैसा हमको पालन करना चाहिए। महाजन मतलब जनों में जो महान है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो 12 महाजन कहलाए जाते हैं। यमराज से यमदूतों ने पूछा अजामिल को जब लेने गए थे कि भगवान यमराज आप हमको ये बताइए कि किन लोगों को हम माने कि वो भक्ति का पालन करते हैं। तो उन्होंने कहा जो व्यक्ति इन 12 महाजनों के बताए गए रास्ते पे पालन करे अपने जीवन का वो व्यक्ति भक्त है, अन्यथा जो अपनी मनोधारणा से किसी धर्म को बना के चल रहा है वो भक्त नहीं है। तो फिर यमदूतों ने पूछा है कौन 12 महाजन, हम ये भी तो पता करना चाहिए। तो उन्होंने बताया 12 महाजन कौन है। तो कहते हैं भागवतम में स्वयंभु नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यासा की वयम। तो 12 लोगों के नाम लिए, कहा स्वयंभु मतलब ब्रह्मा जी, नारद नारद मुनि, शंभु शिव जी, कुमार 4 कुमार होते हैं ना चतुष कुमार तो वो कुमार, कपिलो कपिल भगवान, मनो मनु जो होते हैं हमारी सृष्टि में मनवंतर में हर एक में एक मनु आते हैं मनु, प्रहलादो प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान जिनके लिए प्रकट होते हैं, जनको सीता माता जी के पिता जनक महाराज, भीष्मो भीष्म पितामह, बलिर बलि महाराज, व्यसाख व्यसाखी मीन व्यसा व्यास देव जो व्यास देव है जिन्होंने शास्त्रों की रचना करी, और वयम वयम मतलब मैं खुद भी एक महाजन हूं, यमराज बोल रहे हैं ऐसा। तो भीष्म जो है वो 12 महाजनों में से एक बताए गए हैं। तो हमें उनके बारे में ये जानना चाहिए कि भीष्म देव का पुनर्जन्म पिछला जन्म क्या था और वो कैसे पृथ्वी पर आते हैं। तो बताया गया है कि वो अपने पूर्व जन्म में महाभिषा राजा नाम के एक राजा थे जो कि इश्वाकु डायनेस्टी जो थी, इश्वाकु वंश जिसमें भगवान राम का भी जन्म होता है उसी वंश के वंशज थे, इश्वाकु वंश थे है ना, और उनका क्या नाम था महाभिषा। और उन्होंने अपने जीवन में इतने पुण्य कर्म किए कि उनको स्वर्ग लोक प्राप्त हुआ, और स्वर्ग लोक प्राप्त होने के बाद में वो स्वर्ग लोक में गए तो वहां पर ब्रह्मा जी भी थे, देवता भी थे और गंगा देवी, जिनमें हम जाकर हरिद्वार में हर हर गंगे बोलते हैं, तो वो गंगा देवी भी थी वहां पर। तो ये सबकी सभा चल रही थी, सभा चल रही है, तो इतने में वायु के प्रचंड वेग से, जब बहुत तेज वायु चल रही थी, तो गंगा के जो वस्त्र थे थोड़े से हवा से हट गए। और जो ये महाभिषा राजा थे, तो इन्होंने भक्ति नहीं करी थी, इन्होंने क्या किया था, पुण्य कर्म किए थे, तो स्वर्ग में पहुंच गए थे। और स्वर्ग में पहुंचने के बाद में व्यक्ति की जो भावना है भक्तिमय नहीं होती है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें 14 भवनों को छोड़ करके भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। तो उन्होंने सिर्फ इस बात का क्या किया, दर्शन कर लिया कि गंगा के कपड़े हट रहे हैं गंगा देवी के, और उन्होंने देख लिया। देखने मात्र से उनको श्रापित किया ब्रह्मा जी ने, कहा कि नहीं, तुम इस योग में रहने योग नहीं हो, तुम जाओ कहां, नीचे जाओ। इस तरह से जब उनको भेजा गया, तो फिर जिनका जन्म होता है तो बनते हैं कौन, भीष्म पितामह के पिताजी शांतनु महाराज। तो ये महाभिषा राजा कौन बने, शांतनु। अब शांतनु जो थे, इनका विवाह किससे होगा, उन्होंने कहा भाई तुमने गंगा के ऊपर अपनी दृष्टि डाली है, तो अब तुम्हारा विवाह किससे होना चाहिए, गंगा से। तो और गंगा को भी पृथ्वी पर भेजा गया, तो गंगा जी नीचे आई और साथ में थे शांतनु महाराज। और जब शांतनु महाराज का जन्म होता है, तो भौतिक दृष्टि से देखा जाए, पूर्व जन्म को ना देखें, तो उनके पिता का नाम था प्रति, क्या नाम था, प्रति। हाँ, और ये कुरु वंश में राजा हुए हैं, कुरु वंश के राजा हुए हैं। तो जब इनका विवाह होने वाला था, तो प्रति महाराज ने कहा शांतनु, तो जो कि पिछले जन्म में कौन थे, महाभिष्य राजा, उनको कहा कि अब तुम्हारी उम्र बढ़ गई है, अब तुम्हें क्या करना चाहिए, विवाह करना चाहिए। तो किससे विवाह करें, सुयोग कन्या चाहिए। तो उन्हें कहा जंगल में जाओ और जो भी पहली लड़की दिखे उससे विवाह कर लो, ये मत पूछना तुम कौन हो, तुम्हारी जाति क्या है, कहां से आई हो, जो कोई प्रश्न नहीं पूछना, जो मिले उससे शादी कर लेना। तो ब्रह्मा जी का सृष्टि रचाई हुई है, तो ब्रह्मा जी ने लीला की रचना करी, महाभिषा राजा शांतनु बनकर आए और गंगा देवी श्रापित होकर नीचे आ रहे हैं दोनों, और उसी जंगल में उन दोनों का मिलन होता है। और देखने मात्र से वो कहते हैं तुमसे विवाह करना है, तो वो कहते हैं कोई प्रश्न मत पूछना मेरे से जीवन में, जिस दिन आपने कोई भी प्रश्न पूछा उसी दिन मैं त्याग करके चली जाऊंगी। इस तरह से उनकी पत्नी ने कहा। और विवाह होने के बाद में पुत्र आदि की इच्छा होती है सभी को, तो पुत्र हुए उनके घर में, और एक पुत्र हुआ, तो राजा का घर मतलब एक छोटे से घर में भी पुत्र होता है तो बड़ा जश्न मनाया जाता है ना, बहुत सारी मिठाइयां बांटी जाती हैं। और यहां पर महाभिषा राजा जब शांतनु बने, शांतनु के घर में, राजा के घर में, कुरु वंश के राजा, उनके घर में पुत्र उत्पन्न हुआ, और मां ने क्या किया, ले जाकर उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया। गंगा नदी थी हस्तिनापुर के पास, तो वहां जाकर उन्हें क्या कर दिया, प्रवाहित कर दिया। अब वो पूछ भी नहीं सकते कि क्यों, उन्होंने कहा था जीवन में मुझसे पूछना मत, मैं कौन हूं, क्या कर रही हूं, क्यों कर रही हूं, बस साइलेंट मोड में अपना जीवन चलाते रहना। कितना अच्छा है ना, माताएं खुश हो गए, काश हमारे साथ भी ऐसे होता, साइलेंट मोड में सब कुछ चलना चाहिए। तो इस तरह से बिल्कुल चुप रह के जीवन चलता रहा। एक पुत्र मर गया, प्रवाहित कर दिया, ठीक है, नहीं पूछा, अपने दिल पे पत्थर रखे रह गए। कुछ समय बाद फिर से खुशखबरी, दूसरा पुत्र, उन्होंने गंगा ने फिर वही किया, उठाकर उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया। 3, 4, 5, 6, 7 पुत्रों को प्रवाहित कर दिया। अब तो जो शांतनु थे उनसे देखा नहीं जा रहा था, ये कैसे निर्दय हो गई है स्त्री, उठाकर बच्चों को पानी में प्रवाहित कर देती है। तो उन्होंने कहा अब तो पूछना पड़ेगा। तो जब उनके घर में 8वां पुत्र हुआ, तो उन्होंने जब वो उसको लेकर छुपके से प्रवाहित करने जा रही थी, तो रोक दिया, रुको, क्या करने जा रही हो। तो अपना की काम कर रही थी, तो उन्होंने कहा मैंने तो आपसे मना किया था, मुझे जीवन में कभी रोकना मत, आज आपने रोक दिया ना, अब ये लो आपका पुत्र, आपको पुत्र पसंद है और मैं वापस जा रही हूं। और फिर वो वहां से चलते। तो उन्होंने कहा हो कौन, तो उन्होंने कहा मैं जानु मुनु की कन्या हूं, जानु मुनि थे ना, जानु मुनि की जांग से गंगा जी प्रकट होती है, इसलिए जानु मुनि की कन्या हूं, अपना सारा पता करके मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, और फिर वो वापस चले गए। तो जो ये पुत्र इनके हाथ में आया, ये कौन है, भीष्म पितामह। तो जिनका जिस दिन जन्म होता है वो आज का दिन है, माघ शुक्ल अष्टमी, इसके दिन भीष्म पितामह का जन्म होता है। लेकिन प्रश्न उठता है ये कि वो 7 बच्चों को मारा क्यों, गंगा देवी तो बड़ी पवित्र करने वाली है, तो उनको मारा क्यों। ये प्रश्न सभी के मन में आता है। तो बताते हैं कि सृष्टि में 8 वसु होते हैं, वसु। तो ये जो वसु होते हैं इनका अलग अलग कर्तव्य होता है। कश्यप ऋषि की एक पत्नी है जिनका नाम है वसु, और उसी से 8 वसु उत्पन्न होते हैं, जैसे पृथ्वी वसु, अग्नि वसु, वायु वसु, अंतरिक्ष वसु और आदित्य वसु, चंद्रमा वसु और नक्षत्र वसु और देव वसु। ये 8 वसु होते हैं जो अलग अलग वायु में हेल्प करते हैं, वायु देव की, तो हेल्पिंग मोड में रहते हैं, जैसे हमारे सेवक होते हैं मंदिर में ना, सेवा करते हैं, तो ये वसु होते हैं। कश्यप ऋषि की पत्नी वसु से उत्पन्न होने वाले वसु। तो ये 8 वसु एक दिन वशिष्ठ ऋषि के आश्रम को देखने के लिए गए। वहां पर वशिष्ठ ऋषि ने आश्रम में बड़ा सजाया हुआ था, जैसे होता है ना फेस्टिवल्स में हम अपने टेम्पल को सजाते हैं, तो भक्त तो हमेशा आते हैं मंदिर में, लेकिन जो अभक्त होते हैं वो उसी दिन आते हैं जिस दिन फेस्टिवल डेकोरेशन होता है, तो उस दिन वो सोचते हैं वाओ चलो कुछ चमकदार चीजें देख के आते हैं मंदिर में। तो ऐसे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम को देखने के लिए वो पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो वशिष्ठ ऋषि नहीं थे वहां पर, उनकी गाय थी एक, उसका नाम था नंदिनी। कामधेनु गाय होती ना, इच्छा पूर्ति करने वाली, जो मांगो वो प्रदान कर दे, नंदिनी नाम था। तो जब वो 8 वसु आए तो देखकर सबको बहुत अच्छा लगा, इतना सुंदर सजाया है उन्होंने अपनी कुटिया को, वशिष्ठ ऋषि का आश्रम पूरा सजा हुआ है, और नंदिनी गाय तो बड़ी एकदम अजीब सी बहुत सुंदर लग रही है, जितना दूध चाहो उतना दूध मिलता है, हर इच्छा को पूरे करने वाली कामधेनु गाय। तो सारे वसु तो एक एक करके चले गए, लेकिन जो 8वें वसु थे देव वसु, उनकी पत्नी ने कहा क्या कि ये तो बड़ी सुंदर गाय है। उन्होंने कहा हाँ ये हर इच्छा को पूरी करने वाली गाय है। तो उनकी पत्नी ने क्या कहा, चुरा लो। क्या कहा, चुरा लो, अरे चुरा लो इसको। तो देव वसु कहने लग गए, अरे मैं देवताओं की हेल्प करने वाला सेवक हूं, और अगर मैंने चोरी करी तो मुझे अपराध लगेगा, उन्हें किसको पता चलेगा, आप चुरा लो, आप तो देवताओं की वसु हो, आप कोई छोटे मोटे नहीं हो। तो इस तरह की गलत टेंडेंसी है, वो आदमी को प्रवोक कर देती है ऐसे गलत काम करने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, है ना। तो इसलिए उन्होंने बोला चुरा लो, तो चुरा कर ले गए। अब चुरा कर ले गए तो वशिष्ठ ऋषि जब लौट कर आए तो वो तो ऋषि थे, उन्होंने अपने चिंतन मात्र से देख लिया, हाँ ये कौन है, देव वसु, और वसुओं की करतूत है कि मेरी नंदिनी गाय को चुरा कर ले गए। तो वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया, क्या कि तुम 8 के 8 क्या जाओ पृथ्वी लोक पर जाकर मनुष्य शरीर में भोग भोगो अपने, है ना। तो जब इस तरह से उनको श्रापित किया गया तो सारे वसु घबरा गए, रोने लग गए, बोले हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। बोले क्या हुआ, कह रहे हमारी गलती क्या है, हम तो देखकर वापस आ रहे थे, वो तो हमारा छोटा भाई देव वसु, उसकी गलती है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, तो मैं एक काम करता हूं, अब श्राप तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर देते हैं, थोड़ा न्यूट्रल कर देते हैं, है ना। तो न्यूट्रल कैसे किया, उन्होंने कहा तुम्हारे जन्म होते ही तुम कहां चले जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारी माँ तुम्हें मार देगी, ताकि तुम्हें बहुत दिनों तक इस शरीर के कष्टों को नहीं भोगना पड़ेगा, ऐसे करके बोल दिया। और लेकिन देव वसु जिसने चोरी की है उसको तो लंबे समय तक भोगना पड़ेगा, और इतना भोगना पड़ेगा कि जीवन में तीर भी लगेंगे ना तो भी वो अपने शरीर से प्राण को त्याग नहीं पाएगा, ऐसे करके बोल दिया, श्रापित श्राप कर दिया। अभी देव वधु वसु जो थे वो देव वसु देवव्रत बनकर, भीष्म जिनका नाम है, देवव्रत बनकर शांतनु के घर में आते हैं। और ये जो 8 वसु थे इन्होंने जाकर गंगा से प्रार्थना करी, गंगा देवी से, कि हे गंगा मैया हमारी मदद करो, हम श्राप मिला था और अब हमें मुक्ति का एक ही कारण है कि हमारी माँ हमको कहाँ डाल देगी, हाँ हमारी माँ हमको जान से मारेगी, तो मारने के बाद में ऐसी कुछ रचना करो कि हमारी मुक्ति हो जाए। तो गंगा बोली मैं खुद जा रही हूँ पृथ्वी लोक पे, तो चिंता मत करो, मेरे ही पुत्र बन के तुम आओगे और मैं तुम्हें अपने ही जल में प्रवाहित करके तुम्हारी मुक्ति कर दूँ। होता है ना मृत्यु के बाद गंगा जल में प्रवाहित किया जाता है अस्थियों को, तो ऐसे करके उनको बोल दिया, तो वो सारा सिस्टम ठीक हो गया उनका। लेकिन जो देवव्रत थे उनको मुक्ति नहीं मिली, इसलिए 8वें संतान जब देव वसु देवव्रत के नाम से उत्पन्न हुई उसी टाइम रोक दिया उनको, अरे क्या कर रहे हो, शांतनु ने गंगा को, और फिर गंगा चली गई और शांतनु को पुत्र दे गए देवव्रत। अब जो ये शांतनु थे इनकी एक अब बड़ी इच्छा कि भाई मेरी तो पत्नी चली गई, अब मैं अपने जीवन में अपना हाफ पार्टनर किसको बनाऊं, है ना, बेटर हाफ। बोलते कुछ लोग वर्स्ट हाफ है लेकिन बेटर हाफ होता है, ऐसा हम नहीं बोलते, लोग बोलते हैं। हाँ, तो बेटर हाफ अपना जो अच्छा हिस्सा है, तो उसके साथ मैं किसको अपने साथ लेके आऊं? तो उन्होंने कहा उनके गुरु आदि ने कि आप जाएंगे ना तो आपको एक मछुआरे की कन्या मिलेगी, हाँ, जिसका नाम क्या होगा, सत्यवती। उससे आप विवाह करेंगे तो वो आपकी परिवार में हेल्प कर पाएगी संतान उत्पत्ति करने में। तो वो सत्यवती से जब मिलते हैं उनकी सुंदरता पर इतने मोहित हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो सत्यवती ने कहा कि मैं विवाह तभी करूंगी जब मेरे पुत्रों को राजगद्दी प्राप्त होगी, मेरे पुत्रों को राजगद्दी प्राप्त होगी। तो उन्होंने कहा तो हाँ तो तुम्हारे पुत्रों को राजगद्दी मिलेगी। कह रहे नहीं, तुम्हारी पहली पत्नी गंगा से तो तुम्हारे देवव्रत नाम का एक पुत्र है और उस पुत्र के बड़े होने के कारण गद्दी तो उसे मिलेगी, आप राजा हैं, मैं तो मछुआरे की कन्या हूं, कल को आप मुझे बोल देंगे बस हो गया अब तुम तो मछुआरे की हो जाओ, तो ऐसा नहीं होगा, मेरे पुत्रों को राजगद्दी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अपने पुत्र को बोलता हूं। तो पुत्र को कहा कि बेटा तुम राजगद्दी मत लेना। तो उन्होंने कहा कि राजगद्दी नहीं लूंगा ना ही तो मैं कभी विवाह करूंगा। हा? तो उनको शक्ति दी उनके पिताजी ने इस भीष्म प्रतिज्ञा को लेने के लिए कि तुम जब चाहोगे अपने प्राणों को त्याग सकते हो, ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। हाँ, तो देवव्रत को आशीर्वाद दिया उनके पिता शांतनु ने कि तुम भीष्म प्रतिज्ञा लेने के कारण इतने बलशाली हो गए हो कि जब तुम चाहोगे तब अपने प्राणों को त्याग सकते हो। अब जो ये भीष्म थे इनका नाम देवव्रत से क्या पड़ गया, भीष्म। श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। तो उनका नाम क्या पड़ गया, देवव्रत, देवव्रत से पड़ गया भीष्म। अब जो भीष्म थे ये काशी नरेश की एक मतलब जो ये शांतनु की पत्नी थी सत्यवती, इनसे दो पुत्र उत्पन्न हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। तो विचित्रवीर और चित्रांगद जो थे ये उत्पन्न होने के बाद में बड़े ही वीक थे दोनों के दोनों, और राज संभालने योग्य नहीं थे और लड़ाई करने तो योग्य बिल्कुल भी नहीं थे। तो अब सत्यवती ने कहा कि तुम तो गद्दी लोगे नहीं और तुम तो क्या करोगे, विवाह भी नहीं करोगे, तुमने बोला है ताकि तुम्हारी संतान आगे आके हमारे वंश को ना संभालें, तो कम से कम तुम तो शक्तिशाली हो, तुम्हें पिता से शक्ति प्राप्त हुई है, एक काम करो मेरे बच्चों के लिए विवाह के लिए स्वयंवर में लड़कियां ढूंढ के लाओ। तो चले गए ढूंढने के लिए और काशी नरेश के यहाँ स्वयंवर चल रहा था, वहां पर उनकी तीन पुत्रियां थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका। और भीष्म ने जाकर अपने तीरों से सारे राजाओं के मुकुट को एक ही बार में नष्ट कर दिया और कहा कि अब मैं इन लड़कियों का हकदार हूं। तो उन्होंने कहा लेकिन आपने तो प्रतिज्ञा ले रखी है ब्रह्मचार्य पालन करने का, तो आप कैसे विवाह कर सकते हैं? तो भीष्म ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा लेकिन मेरे जो भाई हैं चित्रांगद और विचित्रवीर वो विवाह करेंगे। तो उनको किडनैप करके वहां से अपहरण करके ले गए अपने हस्तिनापुर में और कहा लो विवाह कर लो। तो इसमें से जो अंबा, अंबिका और अंबालिका, तो अंबिका और अंबालिका को तो पति मिल गए लेकिन अंबा जो थी वो रह गई थी, उसका विवाह नहीं हुआ। तो वो अलग कथा है, किसी और दिन समझ सकते हैं कि अंबा किस प्रकार से अपने उन्होंने जाकर श्राप दिया, उनको कहा कि मैं आऊंगी दोबारा से तुम्हारे ही वध का कारण बनूंगी, और उनके गुरु से शिकायत भी कर दी। कौन थे गुरु उनके? परशुराम। कि आपके भक्त, आपके शिष्य ने कैसा किया मेरे साथ में, विवाह भी किया और आप मुझे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, मैं बिना विवाह के कैसे रह जाऊंगी, ऐसे करके उनको बोला। और मेरा तो ऑलरेडी मैंने प्लान कर रखा था किसी और राजा के साथ विवाह करने के लिए, तो अब मैंने श्राप देती हूँ। और फिर वही अंबा अगले जन्म में क्या बन के आती है, शिखंडी बनकर आती है, और फिर उन्हीं के कारण भीष्म पितामह को इतने तीर सहने पड़ते हैं अपने जीवन में। तो चित्रांगद और विचित्रवीर अपने जीवन को ऐसे ही समाप्त कर देते हैं अपनी बीमारियों के कारण। तो जो उनकी माता थी सत्यवती वो कहती हैं कि मेरे पुत्र तो कोई बच्चा पैदा नहीं कर पाए, अब हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तो वेद व्यास जी जिन्होंने शास्त्रों की रचना करी उनसे अनुरोध किया जाता है कि वेद व्यास आप आकर क्या करिए, हमारे बहुओं को आशीर्वाद दीजिए, अंबिका को और अंबालिका को। तो उनकी बहू आती हैं, तो अंबिका जो है ना देख करके वेद व्यास के चरित्र को, उनकी शक्ल को, तो घबरा जाती है और आंखें बंद कर लेती हैं क्योंकि वो बड़ी दाढ़ी वाले लंबे बाल वाले बड़े लंबे चौड़े व्यक्ति थे, तो घबरा कर आंखें बंद करती हैं। तो उनको जो पुत्र प्राप्त होता है वो कौन होता है, धृतराष्ट्र, आंखें बंद कर ली तो आंखों ऐसे ही हुआ, और जो अम्बालिका थी वो देख करके उधर ना पीला पड़ जाता है आदमी घबराहट में, बोले यार पीले पड़ गए बहुत, क्या घबराहट है, खुश होता है तो लाल हो जाता है, एक कलर चेंज होते हैं हमारे, तो वो दुख और घबराहट के कारण पीली पड़ गई। तो उनके घर में कौन, उनके गर्भ से कौन हुए, पांडु, बचपन से ही पीलिया के बीमारी थी उनको, इसलिए माता जब गर्भवती होती है तो बोला जाता है खुश रहो, भक्ति को सुनो, भक्ति के भजन सुनो, मंदिरों में जाओ, इसलिए सारा वर्णन किया जाता है। तो इस तरह से उनके जीवन में अंबिका और अम्बालिका से धृतराष्ट्र और पांडु की उत्पत्ति होती है, आगे की कथा आप जानते हैं। तो अभी हम भीष्म पितामह के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जिस तरह से ये जो भीष्म थे इन्हीं के जीवन में शिखंडी अंबा बनकर आ जाते हैं और ये अभी तक जीवित ही हैं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा है तो बताया गया है 350 वर्ष के भीष्म पितामह है, 350 ईयर्स, 350 वर्ष के, और जो ये कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक महाभारत चला और शिखंडी के कारण और भगवान की इच्छा के कारण कहा जाए तो उनको लगातार लगातार तीर अपने छाती पे खाने पड़े, खाते रहे खाते रहे खाते रहे खाते रहे, और खाने के बाद में शरसैया बनाकर वहीं पर धड़ाम से गिर जाते हैं और 58 दिनों तक वहीं पर लेट करके इंतजार करते हैं किसका, कि अभी तो सूर्य कहाँ है, दक्षिण दिशा में, दक्षिणायन में है, और जब ये उत्तरायण, उत्तर की दिशा में जाएगा तब मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा। तो भक्त प्रश्न पूछते हैं कि भीष्म पितामह तो भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे तो उनको क्या आवश्यकता थी कि उत्तरायण का इंतजार करें। तो आचार्यगण वर्णन करते हैं कि वो इंतजार नहीं कर रहे थे, वो शिक्षा देना चाहते थे योगियों को, जो लोग भक्ति नहीं करते उन लोगों को, कि जो योगी है जिसने सांस और अपने जीवन में योग तपस्या बल से अपने जीवन को भगवत धाम ले जाना या मुक्ति का प्रयास कर रहा है उसके लिए सही समय होता है उत्तरायण में अपने शरीर का त्याग करना, क्योंकि वो अपनी सांस को रोक सकता है, लेकिन भक्त उसके लिए जियोवा या मरोवा, जियो या मरो, हर जगह क्या बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ऐसे जो भीष्म पितामह हैं उन्होंने सरसैया पर दक्षिणायन जिसे मकर संक्रांति कहते हैं उस दिन अपने शरीर का त्याग किया। तो श्रीमद् भागवतम में भीष्म पितामह ने अपने शरीर को त्याग करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की स्तुतियां करी हैं, भागवतम प्रथम स्कंद 9वें अध्याय में 32 श्लोका से लेके 42 श्लोका तक 10 श्लोकों में उन्होंने भगवान युधिष्ठिर को ज्ञान प्रदान करने के लिए स्तुतियां करी, जिसे भीष्म स्तुति के नाम से बोला जाता है। तो उसके भागवतम में वर्णन आता है कि किस प्रकार से भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया, जिसे निर्विकल्प समाधि भी कहा जाता है। कहते हैं सुत उवाच कृष्णे एवं भगवती मनोवाक दृष्टि वृतभि आत्मनि आत्मनामावेश्या सोवन्ते श्वास उपार्मत। सुत उवाच, सुत ने, सुत गोस्वामी ने बताया कृष्ण एवं भगवती, कृष्ण को ध्यान में रखे किस तरह से मनोवाक दृष्टि वृतभि, मन के द्वारा, वाक वाणी के द्वारा और दृष्टि, दृष्टि के द्वारा। तो मतलब इन तीन तरह से उन्होंने क्या किया, आत्मनि आत्मनाम अवेश्य, अपनी आत्मा में भगवान कृष्ण का स्मरण किया और सो अंते श्वास उपारमतः, और उन्होंने एक सांस खींच करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपने शरीर का त्याग किया। इस तरह से भीष्म पितामह ने शरीर का त्याग किया। तो भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग करने से पहले युधिष्ठिर को ज्ञान प्रदान किया, तो जो ज्ञान भगवान ने भगवत गीता का अर्जुन को दिया वो ज्ञान पहले युधिष्ठिर को देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर जो उम्र में कृष्ण भगवान की मनुष्य लीला जो भगवान कर रहे थे लीलाएं उसमें उम्र में थोड़े से बड़े थे, तो युधिष्ठिर भगवान के ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो कहते थे देखो देहवास्मिनिम यथा देह कौमरम यौवनम जरा, तो युधिष्ठिर कहते हैं ये सब बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती कृष्णा, तुम बच्चे हो, बच्चों वाली बातें करो, कहना हो आप तो। तो इस तरह से उनकी बात उनको जायज नहीं हुई। इसलिए कहते हैं किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने से पहले सबसे पहले सीढ़ी क्या है, समर्पण, सर्वधर्मान परित्याजम मामेकम शरणम व्रज। तो इस तरह से गुरु के शरण में जाएंगे उसके ऊपर श्रद्धा होगी तब उसके द्वारा जो कथा निकलेगी उस पर श्रद्धा होगी, लेकिन उसे सोचेंगे अरे ये तो उम्र में कम है, ये तो यंग है, ये हमको क्या बताएगा, मेरी उम्र तो इतनी हो गई है। तो उम्र का दायरा नहीं होता, तो दो प्रकार के वृद्ध होते हैं, एक होते हैं ज्ञान वृद्ध, एक होते हैं वायु वृद्ध। जैसे बताते हैं कि एक बार एक सभा लगी थी और उस सभा में वहां पर पहुंच जाते हैं कौन, ध्रुव महाराज। और ध्रुव महाराज को देख करके वहां पर अनेकों अनेकों संत आए थे जिनकी उम्र थी 50,000 साल, 60,000 साल, 1,00,000 साल सत्युग में। और ध्रुव महाराज वहां उस सभा में पहुंचते हैं तो राजा उठ करके ध्रुव महाराज को प्रणाम करते हैं। और जिनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, 7-8 वर्ष के थे, 5 वर्ष में तो उन्होंने भक्ति प्राप्त कर ली थी, तो जब उनको देख करके प्रणाम करते हैं तो सारे ऋषि खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि कैसे आपने एक बच्चे के प्रणाम करने के लिए अपनी गद्दी को त्याग दिया, और जब हम आए थे तो हमारे वेलकम के लिए सेवक को बोला माला पहना दो और गद्दी पे बैठे रहे ऐसे करके, तो ये तो अपमान किया आपने हमारा सभा में, हम 50,000 साल से तपस्या कर रहे हैं और ये तो अभी भक्ति प्राप्त करी है इसने। तो कंपैरिजन कर रहे थे किसका, भक्ति और तपस्या का, तप और भक्ति। तो फिर वहां पर राजा ने एक उत्तर दिया, एक एग्जाम्पल दिया, क्या बोला कि अगर रेगिस्तान में कैक्टस का पेड़ कई वर्षों तक खड़ा रहता है और तुलसी का पौधा अभी 5 दिन पुराना है तो आप किसको प्रणाम करेंगे, हाँ किसको करेंगे, क्यों, क्योंकि उसके अंदर गुण है, उसके गुणों के कारण उसको प्रणाम किया जा रहा है। तो ध्रुव महाराज को प्रणाम किया जा रहा है, उन्होंने जो 6 महीने में अपनी भक्ति प्राप्त कर ली, हाँ इसलिए प्रणाम किया, इसलिए नहीं कि उनकी उम्र बहुत कम है या ज्यादा है। तो उसी तरह से जो बाकी लोग हैं वो ये समझते हैं हम उम्र में बड़े हैं, तो वायोवृद्ध होने से ज्यादा, आयु वृद्ध होने से ज्यादा, वयोवृद्ध आयु वृद्ध होने से ज्यादा ज्ञान वृद्ध होना इंपॉर्टेंट है। गुण उसके जिसके ज्यादा है उसको शरणागत किया जा सकता है, चाहे उसकी उम्र 4-5 साल की क्यों ना हो। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, दुनिया उनको प्रणाम करती है, अगर एज फैक्टर देखें तो उनका तो एज बहुत कम है, तो इसलिए एज कहीं पे भी बैरियर नहीं है। तो इस तरह से निर्विकल्प समाधि में भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग करने से पहले युधिष्ठिर को ज्ञान प्रदान किया। अभी भीष्म पितामह जब कृष्ण के बारे में बोल रहे थे तो युधिष्ठिर एक्सेप्ट कर रहे हैं, कृष्ण ने ही उनके हृदय में बैठकर वो ज्ञान उनको प्रदान करवाया। तो उन्होंने राजधर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म, अनेकों धर्मों पर प्रवचन दिया, कई धर्म बताए और अंत में विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में बताया और कहा सारे धर्मों में से सर्वोपरि क्या है, भगवान का नाम। सर्वोपरि धर्म क्या है, भगवान का नाम। कौन सा नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस तरह से उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, भगवान का नाम, विष्णु सहस्त्र नाम। तो पढ़ते हैं ना विष्णु सहस्त्र नाम, तो कई लोग जब जाते हैं प्रवचन करने तो लोग प्रश्न पूछ लेते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम में तो हजारों बार भगवान का नाम आया है, आपका जो नाम है हरे कृष्ण इसमें तो 3-4 बार ही भगवान का नाम आ रहा है। उन्हें तो पता ही नहीं हरे का मतलब भी राधा रानी होता है या राम भगवान भी भगवान होते हैं। तो उनके लिए शास्त्रों में वर्णन आता है क्या, कि हम उनको किस तरह से इस बारे में प्रवचन या प्रचार कर सकते हैं। शास्त्र में आता है, श्लोक कहते हैं, श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोर्ममे, शस्त्र नाम तत तुल्यम राम नाम वर्णने। उसमें कहा गया शस्त्र नाम तत तुल्यम, शस्त्र नामों के तुल्य क्या है, राम नाम वर्णने। राम का नाम, खाली एक बार राम बोल दो तो आपने 1,000 विष्णु के नाम ले लिए, हरि बोल एक बार। अरे लेकिन प्रभु जी हम तो कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो फिर तो उसके आगे कहा गया ब्रह्मांड पुराण का श्लोक। ब्रह्मांड पुराण क्या कहती है, सहस्त्र नाम नम पुण्यम त्रि अवृत्य तु तत्फलम एक वृत्या तु कृष्णस्य नाम एकम तत प्रचारित। क्या बोला, बोला सहस्त्र नाम नम पुण्यम, सहस्त्र नाम को जो पुण्य प्राप्त होता है, त्रि अवृत्य तु तत्फलम 3 बार सहस्त्र नाम बोलो मतलब 3,000 बार, एक वृत्ति तो कृष्णस्य, एक बार कृष्ण बोल दो तो 3,000 बार विष्णु के नाम लेने के बराबर है। नाम एकम तत् प्रचारे, बस एक नाम बोल दो तो 3,000 विष्णु के नाम हो जाते। अरे तो आप जब हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें कृष्ण कितनी बार आता है, 4 बार। तो और 3000 से 4 को मल्टीप्लाई करें तो कितना है, 12000 बार आपने विष्णु का नाम लिया। और राम कितनी बार बोलते हैं, 4 बार, तो 1000 बार बोलते हैं राम का, तो कितना हो गया 4000। तो आप 16 अक्षर का मंत्र नहीं करते हैं 16 नामों का, आप 16000 बार विष्णु का जाप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। हाँ, तो ये है भगवान के नाम की महिमा, ये बताया भीष्म पितामह ने अपने शरीर को त्यागने से पहले। हाँ, तो इस प्रकार से जब युधिष्ठिर को वो ज्ञान प्रदान कर रहे थे और ये सब उन्होंने बताया, तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे आखिरी में समझना कि भगवान के नाम का वर्णन करके भीष्म पितामह गए। अपने एक्शन से तो योगियों को सिखा रहे हैं, लेकिन अपने वचन से अपनी वाणी से वो सिखा रहे हैं भक्तों को कि किस प्रकार से कृष्ण भक्त बनना चाहिए जीवन में व्यक्ति को। और अगर हम देखें तो हमारे जीवन में भी एक भीष्म पितामह है, कौन है बता सकते हैं? श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की तो कैसे, एक हिजोलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज, उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है जय श्रीला प्रभुपाद। उस बुक में उन्होंने प्रभुपाद को और भीष्म पितामह को कंपेयर किया है। तो वैसे तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए भक्तों में, लेकिन अच्छे गुणों में हम बोल सकते हैं उनमें भी हैं, उनमें भी हैं। तो इस तरह से बताया गया कि भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में सबसे बुजुर्ग थे कि नहीं, सबसे बुजुर्ग थे। तो हमारे इस कौन में भी सबसे बुजुर्ग कौन है, श्रील प्रभुपाद। तो इस तरह से वृद्ध अवस्था में भीष्म पितामह महारथी की तरह युद्ध करने के लिए तत्पर थे। तो श्रील प्रभुपाद भी वृद्ध अवस्था में 70 साल की उम्र में युद्ध करने के लिए तत्पर थे। भीष्म पितामह के पास शस्त्र थे और प्रभुपाद के पास शास्त्र थे। शास्त्रों को लेकर उन्होंने युद्ध किया। भीष्म पितामह ने किसके प्रति युद्ध किया, कौरवों के प्रति, कौरवों के खिलाफ। और प्रभुपाद ने किसके खिलाफ किया, माया के खिलाफ, है ना, माया के खिलाफ उन्होंने अपने शस्त्रों से लेकर अपना युद्ध जारी रखा। और अपनी शरसैया पर भीष्म पितामह ने धार्मिक सिद्धांतों का प्रवचन दिया 5 दिनों तक। 5 दिनों तक भीष्म पितामह प्रवचन दिए, उसको कहते हैं भीष्म पंचक, जो कार्तिक के दिनों में आता है। 5 दिनों तक उन्होंने धर्म युधिष्ठिर महाराज को बताया, राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म, भक्त धर्म, काफी सारे धर्मों के बारे में उन्होंने वर्णन किया। उसे भीष्म पंचक कहते हैं, तो काफी भक्त रखते हैं। और भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई आज आपने ये धर्म का ज्ञान इनको दिया है ना, ये मैं देना चाहता था लेकिन मुझसे इन्होंने लिया नहीं, लेकिन आपने दिया है और आज ज्ञान प्रकट हुआ है, तो जो व्यक्ति जीवन में भीष्म पंचक व्रत का पालन करेगा वो मेरा कृपा प्रार्थी हो, मैं उसे कृपा प्रदान कर दूंगा। भगवान कृष्ण ने इसलिए स्टैंप किया भीष्म पंचक व्रत को। तो प्रभुपाद ने भी अपने अंतिम समय में, सर सैया बोलते हैं ना, तो उसी तरह से प्रभुपाद जी ने भी अपने अंतिम समय में सारे GBCs को बुलाया था, गवर्निंग बॉडी कमीशंस को वर्ल्ड वाइड, कि आओ अब मैं अपने शरीर का क्या करने वाला हूँ, त्याग करने वाला हूँ। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ व्हाट आई प्रीच्ड थियोरिटिकली आई एम शोइंग यू प्रैक्टिकली, जो मैंने बोला अपने भाषा में अपने वर्ण वचनों में वो मैं आज आपको करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से व्यक्ति को अपने जीवन में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम् या प्रयाति सामद्भावम् याते नास्त्री संशयम्। इस तरह बोला गया, अंत में जो मेरा स्मरण करके अपने शरीर का त्याग करेगा वो मेरे धाम को आएगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कैसे ध्यान करें, भक्त बोलते हैं एंड टाइम में तो कफ पित्त वात से गला पूरा अवरुद्ध हो जाता है, बीमारियां घेर लेती हैं, परिवार के लोग टेंशन में खड़े होते हैं, उस समय कैसे भगवान का नाम याद आएगा। तो प्रभुपाद जी ने दिखाया कि किस तरह से भगवान का नाम याद आता है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का ट्रांसलेशन करते हुए प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे हैं, हालत इतनी खराब हो चुकी है, उनका शरीर से पूरी चमड़ी अलग है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी प्रीचिंग, प्रचार को नहीं रोक रहे हैं। और प्रचार किस लिए कर रहे हैं, नाम के लिए प्रचार कर रहे हैं, दूसरों पर कृपा करने के लिए, कि ये लोग बद्ध हैं जीव संसार में, इनकी इनकी मुक्ति, इनकी भक्ति का कारण है ये प्रवचन, ये भागवत ग्रंथ। अगर मैं ये प्रदान नहीं करूंगा तो फिर ये कैसे अपने जीवन में सुखी रह पाएंगे, आनंद अनुभव कर पाएंगे। तो एक वीडियो है इस्कॉन का जिसका नाम है लास्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ श्रील प्रभुपाद या फाइनल लेसन, उसके अंदर प्रभुपाद जी का ये सारा दिखाया गया कि वो श्रीमद् भागवतम का प्रचार कर रहे हैं। भीष्म पितामह जब अपने अंतिम समय में थे तो कृष्ण का दर्शन किया, है कि नहीं, और श्रील प्रभुपाद जी ने भी कृष्ण का दर्शन किया कि नहीं किया। कहाँ के आप? भगवान थे? थे भगवान? हाँ, नाम के रूप में भगवान का दर्शन किया। सारे भक्त खड़े थे और क्या बोल रहे थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे।
हाँ, तो प्रभुपाद जी जो है उसी तरह से अंत समय में हरि नाम रूपी भगवान, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम के रूप में भगवान आते हैं, उनका दर्शन करते हुए भागवतम का प्रवचन करते हुए अपने मनो वाक और अपनी दृष्टि में भगवान को रखते हुए श्याम सुंदर विग्रह का दर्शन करते हुए अपने शरीर को भगवत धाम लेके गए। तो इस तरह से विश्व पितामह ने भी ऐसे ही किया। वो महारथी थे, अकेले महारथी होते हैं ना, एक होते रथी, एक अधिरथी, एक महारथी, बड़े योद्धा, मतलब उनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। तो प्रभुपाद जी के आगे कोई टिक सकता था? तो ऐसे प्रभुपाद भी महारथी हैं, इस्कॉन के हैं। तो जैसे जो पांडव थे वो बड़े प्रेम पूर्वक भीष्म पितामह को प्रणाम करके अपने युद्ध में जाते थे, तो ऐसे ही भक्तों को भी भीष्म पितामह को प्रणाम करके प्रचार के युद्ध में जाना चाहिए। हाँ, कि भीष्म पितामह आज हमारी वित, तो वो कहते थे विजयी भवा, तो ऐसे प्रभुपाद जी भी आशीर्वाद देते हैं विजयी भवा, तो फिर भक्त प्रचार कर पाते हैं ना। तो प्रभुपाद जी का आशीर्वाद बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बताते हैं एक भक्त कि प्रभुपाद जी महारथी कैसे थे, तो वो बता रहे थे कि राधा दामोदर मंदिर में जब प्रभुपाद जी रहते थे, मतलब विदेश से आने के बाद, जाने से पहले भी राधा दामोदर में रहते थे और वहां से आने के बाद भी कुछ समय 1971 या 72 में प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। तो कई बुक्स भी लिखी गई हैं प्रभुपाद एट राधा दामोदर, जो उनके जीवन की पहले की बारे में लिखा है और कुछ बुक्स में बाद के बारे में भी बताया गया। तो सत्स्वरूप महाराज ने लिखा है, श्रुति कीर्ति प्रभु ने लिखा है और भी अनेकों भक्तों ने उनके बारे में बताया। कहते हैं कि प्रभुपाद जी अपने दिनचर्या में मालिश है ना, मसाज को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। वो कहते थे मेरा फिजिकल बॉडी भी फिट रहना चाहिए ताकि मैं प्रचार कर सकूं। हाँ, तो उनके शरीर पे वो मालिश कर रहे थे श्रुति कीर्ति प्रभु एक बार। तो कहते हैं मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, प्रभुपाद कहते थे सिर के ऊपर ना ऐसे ऐसे करो मेरे, तो कहते थे प्रभुपाद मैं आपके सिर को दबा नहीं सकता हूँ, हम तो भक्त कहते हैं प्रभुपाद सॉफ्टली हैंडल करो, टच मत करो, दूर से बस प्रणाम। कहते नहीं नहीं दबाओ, कस के दबाओ पूरा। तो डरते थे, तो बता रहे थे, कहते हैं इफ आई से यू डू इट, अगर मैं कह रहा हूँ तो आपको करना चाहिए, इफ आई से मैं बोल रहा हूँ। तो कहते ठीक है प्रभुपाद। तो बड़े दुख से होके ना सिर दबा रहे थे प्रभुपाद का। तो बोले कभी कभी ना दबाते दबाते ना इरिटेशन हो जाता है ना, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट, अब तो बोलेंगे बस करो। तो प्रभुपाद जी कहते नहीं थे, अपने ना भजन में लगे या कुछ चिंतन में या रीडिंग कर रहे हैं, और वो है ना कह रहे थे, हम तो पैशनेट थे भक्त विदेशी, तो कह रहे हम जोर लगाने लग जाते थे, यंग 24 साल के प्रभुपाद जी 71 साल के, और वो जोर लगा रहे हैं ऐसे करके ना, और लगाते लगाते झुका देते थे पूरा प्रभुपाद जी को, ऐसे ऐसे हो जाते थे, और उसके बाद बोलते थे अब तो बोलेंगे प्रभुपाद जी की बस करो। तो बोले पूरा ऐसे हो जाते थे, पूरे के पूरे हम थक जाते थे, प्रभुपाद यू नीड मोर, आपको और चाहिए? तो प्रभुपाद कहते हैं आर यू टायर्ड, आप थक गए हो? तो है ना इस तरह से 45 मिनट्स तक बोले हमने कई बार मसाज किया, तो लगता था पूरी बॉडी एक बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति की इतनी झुक गई है और उसके ऊपर एक यंग आदमी जोर लगा रहा है पूरा ऐसे से पीठ के ऊपर, लेकिन उनको दर्द नहीं हो रहा है। तो लगता था कि अपने शरीर से अलग जीवन जीते हैं श्रील प्रभुपाद। तो भीष्म जी ने भी क्या किया, अपने शरीर त्याग करने से पहले उत्तरायण का समय इसलिए चुना ताकि योगियों को बता सकें, और प्रभुपाद जी ने भी अपने समय में ये लीला करी भागवतम प्रीचिंग की, कि कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन आए हमको प्रीचिंग नहीं रोकनी चाहिए, है ना। और प्रभुपाद जी देखिए इतनी ओल्ड एज में भी प्रीचिंग करने के लिए कहाँ जाए, अमेरिका गए हैं। तो बताते हैं कि वृंदावन में प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से मिले एक बार, तब वो मिलने के लिए आए और जीबीसी के बारे में कुछ बातें करनी थी। प्रभुपाद जी से उन्होंने कहा कि अब मैं जीबीसी का रोल नहीं निभाना चाहता हूँ, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बोला कि अब मैं गवर्निंग बॉडी कमीशन का रोल नहीं निभाना चाहता हूँ, विष्णुजन महाराज अमेरिका में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं प्रीचिंग एक्टिविटीज करूँ, क्योंकि प्रभुपाद आप भी कहते हैं प्रचार ही सार है, प्रीचिंग इज द एसेंस, अभी तो मैं भी चाहता हूं कि मैं भी जाऊं और प्रचार करूं। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ ठीक है, आप जाइए, और आपको हमेशा कभी भी जो मैनेजर होता है ना मैनेजमेंट करने के लिए, वो तो पैसे देकर भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन प्रचार वही कर सकता है जिसके जीवन में भक्ति का संचार है, सेल्फ रियलाइजेशन जिसके अंदर है, वो प्रचार इफेक्टिव कर सकता है, इंपैक्टफुल कर सकता है। वरना तो कैसेट भी बोलता है, रिकॉर्डर भी बोलता है, लेकिन प्रचार का मतलब दूसरों का जीवन परिवर्तन। प्रभुपाद जी का प्रचार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वाइड लोगों को बदला। लोग बोलते हैं क्यों प्रभुपाद का गीता पढ़े हम, क्योंकि इस प्रचार से जीवन परिवर्तन होता है, हुआ है, एग्जाम्पल है। जिनके प्रवचन से कोई डिफरेंस ही नहीं आया तो कोई फायदा? तो प्रभुपाद कहते थे मैनेजर कैन बी टेकन बाय पेइंग सैलरीज, सैलरी देकर भी मैनेजर मिल जाएगा, लेकिन प्रचार वही करेगा जिसके जीवन में भक्ति का संचार है, भक्ति का संचार जिसके जीवन में सेल्फ रियलाइजेशन है, वो व्यक्ति प्रचार कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि आप जाइए प्रचार करने। और फिर प्रभुपाद ने अपने जीवन का एक पास्ट, मतलब एक जीवन के बारे में बताया कि मैं जब ग्रस्त जीवन में था तभी मैं हमेशा सोचता था कि मैं किस तरह से सभी लोगों को लाभान्वित करूं, कैसे सबका जीवन बदल दूं, सबको कैसे भक्ति में लगा दूं। हाँ, क्यों नहीं लोग भगवान के भजन में आते, क्यों नहीं भगवान आरती में आते, क्यों नहीं लोग इतना सब जानने के बाद में भी मंदिरों के अंदर नहीं आते हैं। हाँ? तो इस तरह से प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं सर्वभूतानाम, मैं सबके हृदय में हूं, लेकिन फिर इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा, सब क्यों नहीं आते हैं? तो इसके लिए भक्त की आवश्यकता है। तो जो भक्त जुड़े हुए हैं मंदिरों से, उनको जाकर चाहे छोटा हो बड़ा हो सबको क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जब बुजुर्ग हो जाओ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं तमाल कृष्ण महाराज को, जब बुजुर्ग हो जाओ और जब आपका शरीर काम ना करे तब फिर मायापुर में जाकर या वृंदावन में जाकर क्या करना, जप करना। जैसा लोग सोचते हैं यंग अवस्था में हम चले जाते हैं मायापुर या वृंदावन, वहां बैठ के जप करेंगे, तो प्रभुपाद ने कहा जब बूढ़े हो जाओ तब करना, जब तक यंग हो तब तक क्या करो, प्रीचिंग, तब तक प्रचार करते रहो बस। तो फिर तमाल कृष्ण महाराज ने उनसे पूछा, प्रभुपाद आपने ये बताया, हाँ थैंक यू सो मच कि आपने हमारे से ये शेयर किया, तभी तो आपने चैतन्य चरितामृत में कहा गया है भारत भूमि ते जन्म ले ले, हाँ जन्म ले ले यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पहले अपना जीवन सार्थक करो और फिर दूसरों पर परोपकार करने के लिए निकलो, लेकिन ज्यादातर लोग पहले परोपकार करने चल देते हैं, अपने जीवन तो लेफ्ट राइट होता है उनका सारा। तो इस तरह से प्रभुपाद ने कहा जब मैं गृहस्थ जीवन में था तो मैं नीचे आने वाले गेस्ट जो होते थे मेरे घर में उनको प्रचार करता था और मेरा परिवार ऊपर बैठकर चाय पीता था। तो मैं अपनी पत्नी को कहता था चुन लो या तो चाय या तो मैं, तो मेरी पत्नी ने किसको चुना, चाय को चुन लिया, और मैंने चैतन्य को चुन लिया, चैतन्य महाप्रभु को चुन लिया। तो मैंने चैतन्य महाप्रभु को चुन लिया और उन्होंने चाय को चुन लिया। तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा थैंक यू प्रभुपाद, थैंक यू सो मच कि आपने अपने परिवार का त्याग कर दिया, हा? और उससे आपने किसको बचाया, हमको बचाया, फॉर सेविंग अस। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा सदा प्रचार करते रहो और बूढ़े होने के बाद में मायापुर चले जाना। तो प्रभुपाद से उन्होंने पूछा कि बुजुर्ग कौन होता है, तो उनका देखना पड़ेगा, ये आपका निर्णय आपको स्वयं करना पड़ेगा। कुछ लोग जवानी में बूढ़े हो जाते हैं, है ना, घुटने काम नहीं करते, पीठ काम नहीं करती, फेफड़े काम नहीं करते, बीमार हुए पड़े हैं। ठीक है भैया, आपको वृंदावन जाना चाहिए, अंत समय आ गया आपका। लेकिन प्रचार में जाएगा तो क्या बोला, अरे 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 भैया प्रभु जी को पहुंचाओ मंदिर वापिस, यही निकल जाएंगे ये तो। तो उन्होंने कहा तो आपको निर्णय खुद करना पड़ेगा कि कब आप बूढ़ा अपने को महसूस करते हैं। और प्रभुपाद ने कहा कि मैं अपने को आज तक बूढ़ा महसूस नहीं करता हूँ, 70-72 साल की उम्र में क्या कर रहे हैं, मैं आज तक अपने को बूढ़ा महसूस नहीं करता हूँ। और उन्होंने कहा इसीलिए हमारे प्रोसेस को बोलते हैं नेवर स्टॉप प्रीचिंग, और मैं अंत काल तक भी कभी बूढ़ा महसूस नहीं करूंगा, चाहे स्थिति कैसी है, जब शरीर से चमड़ी अलग हो गई है, देखेगा कोई वीडियो ना तो कहेगा कैसी हालत में बोल रहे हैं, बोल कैसे सकते हैं, वो भी भागवतम गुह्यतम ग्रंथ 10वां स्कंद, ओ माय गॉड कैसे बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं, ओके वो कह रहे हैं कि अंदर से उत्साह है कि मैं बूढ़ा नहीं हूं, मैं भगवान का नित्य दास हूं, आत्मा के स्तर पर है प्रभुपाद, शरीर के स्तर पर नहीं है। तो जो भक्त आत्मा के स्तर पर होकर प्रचार करेगा ना, घुटने में दर्द है, ये दर्द है, वो दर्द है, उसको भक्ति रोक नहीं पाएगी, उसको भक्ति में आना पड़ेगा, आएगा वो उत्साह पूर्वक आएगा। हम आ नहीं पाते हैं क्योंकि हम अभी तक शरीर के बंधनों में है, कभी मेरे बुखार है, कभी मुझे ये है, कभी मुझे वो है। हाँ, तो ये सारी दिक्कतें हमारे जीवन में रहती हैं। और श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक के ऊपर और थोड़ी सी चर्चा करेंगे, समय ज्यादा नहीं लेंगे आप लोगों का। उसमें कहा गया है, तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितं यन्मे असूनस्य त्याजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनम् अगात। इसका अनुवाद है श्रीमद् भागवतम में, सबों पर समान रूप से दयालु हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं। जब मैं मेरे जीवन के अंत कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनका सेवक हूं, जो पूरा जीवन भगवान की सेवा करेगा, सेवक हूं, इसलिए क्या किए हैं अंत में, क्या है, साक्षात कृष्ण दर्शनम, साक्षात कृष्ण का दर्शन हो रहा है। आप अभी हरे कृष्ण करने में आलस दिखाएंगे तो फिर कैसे अंत में हरे कृष्ण आपको याद आएगा। तो अंत में हरे कृष्ण याद आने के लिए आपको अंत नहीं सोचना है, आपको अभी हरे कृष्ण बोलना है। हाँ, अपनी आत्मा के स्तर पर सोचते हुए, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, मैं दास हूं और दास का कर्तव्य अपने स्वामी को निरंतर भजन करते रहना, उनको थैंक यू बोलते रहना, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी सच ए नाइस बॉडी, मुझे आपने शरीर दिया, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी सच ए नाइस इस्कॉन फैमिली, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी फूड टू टाइम्स इन अ डे एटलीस्ट, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी इंटेलिजेंस। तो वो थैंक यू कैसे बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो जो पांडवास थे उनको पता था कि भीष्म पितामह सामने वाली साइड में है और ये आसानी से मरने वाले नहीं है, है ना, बहुत बड़े योद्धा है, महारथी हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई देखो, इनको मारना चाहते हो तो फिर इसका इन्हीं से पूछो कि कैसे मारे जाएंगे, है ना। तो कुछ तीरों को लेने के लिए, ये तीर स्पेशल तीर है, ये ले जाओ, इनसे आप मुझे मारोगे तो मैं इनसे मैं गिर सकता हूं, अन्यथा मैं नहीं गिरूंगा, और आशीर्वाद लेके आओ इनसे। अभी वो बोले कि भीष्म पितामह हम आपको मारना चाहते हैं, तो कहें विजयी भवा, आपको कोई बोले आकर मैं आपको मारना चाहता हूं, आप बोले यस सक्सेसफुल हो आपका मिशन, ऐसा होगा कभी? और उससे पहले रिपोर्ट लिखा देंगे, FIR, डर के भागेंगे। लेकिन भीष्म पितामह इतने बड़े भक्त हैं कि जब टेंट के अंदर रात को दोनों आर्मी टेंट में रुकती थी अपने अपने प्रांगण में पंडालों के अंदर, तो भीष्म पितामह से मिलने के लिए गए सारे पांडव और रो रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे, कह रहे भीष्म पितामह हम जाते हैं कि हम आपको नहीं हानि पहुंचाना चाहते, आप हमारे पितामह, हम आपकी गोदी में खेले, आपसे हमने शस्त्र विद्या भी सीखी है हम, लेकिन भगवान ने कहा है कि हमारी विजय होनी चाहिए और हमारी विजय तभी हो सकती है जब 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 आप नहीं रहेंगे। विजय भव, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इसलिए नहीं कि मैं मर जाऊंगा, इसलिए कि कृष्ण ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुन लिया। और उन्होंने वादा कर दिया, इशारा कर दिया, जब वो खड़े थे तो उन्होंने देखा कि टेंट के बाहर से ना एक पीताम्बर उड़ रहा है। कृष्णा, अरे वेरी नाइस, थैंक यू फॉर एंगेजिंग मी इन योर सर्विस, आपने मुझे चुन लिया अपनी सेवा के लिए, मैं तैयार हूं। तो अपने शरीर का त्याग करने के लिए भक्त तैयार होता है ना, तो इसीलिए हम जो भक्त होते हैं ना हमेशा जीने मरने की टेंशन नहीं रखते हैं। और फिर उन्होंने वहां पर जाकर कहा कि बस अब कल तीर चलेंगे और तुम्हें हारना है, वो समझ गए थे मुझे हारना है। इधर से अर्जुन बाण चला रहा है और भीष्म पितामह बहुत लाइटली उन बाणों का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन साथ में चिल्लाते जा रहे हैं, वो तीर लगता था लेकिन कोई असर नहीं होता था। तो भीष्म पितामह अपनी मृत्यु के लिए खुद चिल्लाते थे, कम ऑन बक अप अर्जुन, बक अप, कम ऑन मोर फास्टर मोर हार्डर, शेक ऐसा मारता था अर्जुन खींच के ना, तब लगते थे कुछ एक आधा, फिर भी कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा था। फिर और जोर से चिल्ला, अर्जुन और जोर से, जोर लगा के, बड़ा वाला थी, वो वाला मारो, वो वाला, ऐसे वो बता रहे खुद अपनी मृत्यु के लिए ये है। और हमें उनको दर्द हो रहा है ना, तो अर्जुन रो रहा है, ऐसे आंखों से आंसू निकल रहे हैं और तीर मार रहा है, और कृष्ण भी देख रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो मुस्कुरा रहे हैं कि वो जान रहे हैं कि ये शरीर से ऊपर के स्तर पर है। हमारे छोटा सा दर्द होता है तो हम पेन किलर खाते हैं, वो उनके इतना दर्द है, इतने तीर हैं, बताते हैं कि उंगली का स्थान भी नहीं था, उंगली रख सके इतना स्थान नहीं है, तीर टो से लेकर नीचे पैर के पंजे से लेकर पूरे कंधे तक लगे हुए हैं पूरे। और फिर उन्होंने क्या किया, नीचे आके गिर जाते हैं। तो बाहरी रूप से वो शिक्षा दे रहे हैं, क्या बताते हैं कि कोई कितना भी शक्तिशाली हो तो वो व्यक्ति भगवान कृष्ण के सामने टिक नहीं सकता है। जस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम
येशाम का पते जनार्दन, हाँ उनके साथ में जनार्दन थे इसलिए उनकी जय होने वाली थी। लेकिन उन्होंने ये चीज बताई कि जिसके जीवन में कृष्ण है उसकी विजय निश्चित है, चाहे वो भीष्म पितामह जैसा महारथी क्यों ना हो। लेकिन अगर हम इसके गुह्यतम तत्व में देखें तो भीष्म पितामह को वो एक तो प्रीचिंग कराना चाहते थे योगियों को प्रीचिंग, और दूसरा ये कि भक्त जो होते हैं मेरे वो अपने जीवन का परित्याग अपनी इच्छा से करते हैं, दक्षिणायन में ना करके उत्तरायण में, और प्रीचिंग कि ऐसी कंडीशन में भी क्रिटिकल कंडीशन में भी प्रीचिंग कंटिन्यू करना चाहिए, प्रचार जीवन में कंटिन्यू, ये शिक्षा देने के लिए भगवान ने भीष्म पितामह की ये लीला करी। और जब वो स्थान आ गया कि जब वो पूरे बैलेंस नहीं कर पा रहे थे अपने तीरों को, तो वो जब नीचे लेट गए शरसैया पे तो उनकी गर्दन लटक रही थी और प्यास लग रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अर्जुन को कहा कि अर्जुन बहुत प्यासा हूं थोड़ा जल मिल जाएगा, तो अर्जुन ने वहां पर तीर मारा और वहां से गंगा जी प्रकट करी। तो आज भी जब हम कुरुक्षेत्र स्थान में जाते हैं तो स्थान को बोलते हैं बाण गंगा, जहां पे बाण से गंगा प्रकट करी, और जिस स्थान पर भीष्म पितामह अपने देह का त्याग किया उसे बोलते हैं भीष्म कुंड, आज भी वहां पर वो भीष्म कुंड है। तो इस तरह से हीरो के जैसे उन्होंने अपने जीवन को वहां पर एंड किया। तो यहां पर एक चीज ये आती है कि जो भीष्म पितामह थे उनका जो ये जीवन जाने वाला जो शिक्षाएं हैं, तो हमारे जीवन में हम कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं कभी भी, भक्त बोलते हैं ना हमें कृष्ण का दर्शन नहीं होता है, तो भीष्म पितामह को दर्शन क्यों होता है, हमको दर्शन क्यों नहीं होता है। बहुत सारे लोग जाते हैं अपना शरीर त्याग कर, मंदिर में भी डेली आते हैं, हरि नाम भी जपते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होता है, क्यों नहीं होता, कारण क्या है इसका। तो इसका कारण बताते हैं कि वी आर ऑनेस्ट, इफ वी आर ऑनेस्ट कृष्णा विल बी ऑनेस्ट, अगर हम सच्चे हैं तो कृष्णा सच्चे हैं, इफ वी आर चीटर्स कृष्णा विल बी चीटर, वो तो सबसे बड़े छलिया है, छल लेते हैं, अगर हम चीटिंग करेंगे ना घर में बोलते प्रभु जी घर में बहुत अच्छी माला होती है प्रभु जी, मंदिर में ना सारे भक्त बोलते हैं जाए 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 जाए, इसलिए ना होनी है, हम घर में कंफर्टेबल कर पाते हैं, तो आप कर पाते हैं तो कर पाते हैं तो करिए, लेकिन नहीं कर पाते और बोलते हैं कर पाते हैं, इफ यू आर अ चीटर देन कृष्णा विल चीट यू, एंड वी कंसील अवर सेल्फ, अगर हम अपने को छुपाते हैं भगवान के सामने खोलते नहीं है तो फिर कृष्णा विल कंसील हिमसेल्फ, तो फिर कृष्णा भी दर्शन नहीं देते है ना। अगर हम मंदिर नहीं आएंगे तो भगवान हमारे लिए क्यों आएंगे, अगर हम भगवान की कथा में रुचि नहीं लाएंगे तो क्यों भगवान हमारी ग्राम्य कथाओं को सुनेंगे। तो इसलिए भगवान के सामने अपने को खोलना चाहिए। तो इसकी एक छोटी सी कथा आती है, कहते हैं जब रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण अरण्य कारण वनों में घूम रहे थे, तो घूमते घूमते वो पहुंच जाते हैं कौन से स्थान पे, जहां बाली और सुग्रीव रहते थे। तो बाली और सुग्रीव का आपस में क्या था, युद्ध था, लड़ाई हो गई थी भाइयों में आपस में, तो बाली अलग रहते थे और सुग्रीव अलग, और बाली अभी वध नहीं हुआ था उनका। तो सुग्रीव जो थे उन्होंने देखा कि दो युवक आ रहे हैं, राम और लक्ष्मण, उन्होंने कहा अरे देखो लगता है बाली ने किसी दो योद्धाओं को भेजा है, देखने में तो शक्तिशाली लग रहे हैं, वीर सूर्यवंशी तेज था उनके चेहरे पे, भगवान स्वयं चले आ रहे हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे सुग्रीव जी। तो हनुमान जी को बोले, हनुमान जी क्या बोल रहे थे उस टाइम, राम 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 नाम तो जप रहे हैं, और जब भगवान सामने आ रहे हैं ना तो पहचान नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने सुग्रीव ने कहा जाओ हनुमान जाओ जल्दी से पता करो ये कौन है। तो हनुमान जी ने अपना वेश क्या रखा, ब्राह्मण का वेश, और ब्राह्मण का वेश रखकर सामने आए और बोले आप लोग कौन है युवक जो जंगल में घूम रहे हैं। तो राम और लक्ष्मण जो थे वो समझ गए कि ये हनुमान है, भगवान है, वो तो हृदय में विराजमान है। अर्जुन को बोला भगवान ने, ईश्वरम सर्व भूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठते, ब्राह्म्यम सर्व भूतानाम यंत्र आरूढ़ माया, मैं तो सबके हृदय में विराजमान हूं। तो लक्ष्मण जी ने कहा ये हैं श्री राम और ये दशरथ महाराज के पुत्र हैं अयोध्या वासी श्री राम। तो हनुमान जी ने खट से अपने को प्रकट कर दिया और कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये मेरे भगवान जिनका मैं रात दिन जप करता हूं वो मेरे सामने आए और मैं उनको पहचान नहीं पाया। तो भगवान ने कहा वहां पर एक शिक्षा दी हमको, क्या भगवान ने कहा कि जब तक तुम अपनी आइडेंटिटी मुझसे छुपाते रहोगे, आई एम अ चीटर, आई एम फॉलन, आई एम डर्टी, आई एम दिस, आई एम दैट, जब तक बोलोगे नहीं, खोलोगे नहीं अपने को, छुपाते रहोगे, तब तक भगवान भी अपने को नहीं दर्शाते हैं। हनुमान जी ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, इसलिए भगवान को वो समझ नहीं पाए। जब उन्होंने बोला कि हाँ मैं हनुमान हूं, तो उन्होंने तुरंत अपनी आइडेंटिटी खोल दी और उन्होंने लक्ष्मण जी ने कहा ये है राम और मैं हूं इनका अनुज लक्ष्मण छोटा भाई। तो फिर हनुमान जी को बहुत गिल्टी हुआ। तो ऐसे हम सारा दिन हरे कृष्ण करते हैं, लेकिन कृष्ण नाम रूप है भगवान और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है, ये हम समझ ही नहीं पाते, पूरा जीवन निकल जाता है। नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न नाम नामिना। नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है, ये समझ ही नहीं पाते। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम भगवान के नाम में दर्शन कर पाए, आनंद ले पाए भगवान के नाम का, रगड़ा पट्टी माला ना हो हमारी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने को खोलना पड़ेगा। तो दो मेथड है खोलने के, कई भक्त पहले भी चर्चा कर चुके हैं, या तो भगवान के सामने दिल खोल दो, लेकिन भगवान रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं क्योंकि अभी हम पतित अवस्था में हैं, तो इसलिए उनको खोलना चाहिए जिनके सामने आप समझते हैं कि हाँ ये मुझे भगवान के बारे में बता सकते हैं, ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, और वो होते हैं गुरु, जिनके सामने हम अपना हृदय अगर खोलते हैं ना कि मेरे को बहुत ये ड्रीम्स आते हैं, मैं बहुत लस्टी हूँ, मुझे 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 बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो फिर जब ये बोल देंगे ना तो बोलना ही तोड़ना है, बोल दिया तो समाप्त। आइडेंटिटी रिवील करते ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस तरह से भगवान का दर्शन तुरंत हो जाता है। तो हम भगवान के दास हैं, आज भीष्म अष्टमी है, भीष्म पितामह का आविर्भाव दिवस, तो हमने इसमें शिक्षाएं ली कि एक तो अपने को भक्तों को रिवील करना चाहिए और दूसरा प्रचार को जीवन का सार समझना चाहिए, पर प्रचार वही कर सकता है जिसके जीवन में भक्ति का संचार है। तो भक्ति का संचार लाने के लिए अपने को खोलना पड़ेगा गुरु के सामने और ध्यानपूर्वक क्रिटिकल सिचुएशंस में भी भक्ति में आना पड़ेगा। हमें भगवान की भक्ति से कोई रोक सकता है तो वो कौन है, हम खुद, मैं। जिस दिन ये मैं खत्म हो जाएगी उस दिन हम भगवान के दंडवत करने 25 बार भी आ सकते हैं, हरे कृष्णा सारा दिन भी जप सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये सीखा, भीष्म पितामह ने अपने अंतिम समय में भी प्रचार को जारी रखा, क्रिटिकल सिचुएशन में भी, है ना। तो इस तरह से हमें भी प्रचार को जारी रखना चाहिए और सदा बोलते रहना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न?